दोस्तों हर किसी ने शार्क टैंक इंडिया को देखा ही होगा। एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज़ चल रहा है इस देश में, इस दुनिया में। पर आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? आपको भी बिज़नेस स्टार्ट करना, आप सीखोगे कैसे? MBA करने जाओगे, MBA से आप बिज़नेस सीखोगे नहीं। अगर बिज़नेस सीखना है ना, आप सही पॉडकास्ट के यहाँ आए हो। चाय सुट्टा बार की शुरुआत की थी अनुभव दुबे ने बहुत ही कम उम्र में, और अब एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है जहाँ 250 से ज़्यादा आउटलेट्स है चाय सुट्टा बार के। इस एपिसोड में हमने कोशिश करी आपको प्रैक्टिकली जुगाड़ू तरीके से बिज़नेस सिखाने की। अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या स्टूडेंट है जनरली, तो पता है एग्ज़ाम से पहले कोई सीनियर आपको कोई चीज़ बता देता है ना कि भाई इसका लॉजिक ये है, रिमेंबर दिस इन दिस वे, ये जानिए इस सब्जेक्ट के बारे में। उसी टाइप का एक बहुत फ्रेंडली, बहुत ही ब्रो स्टाइल, पर बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड एपिसोड है। आई होप आप इस एपिसोड से सीखें, और आई होप कि आप इस एपिसोड को अपने एंटरप्रेन्योरियल दोस्तों के साथ, जो आपके पोटेंशियल कोफाउंडर्स है, जो आपकी पोटेंशियल टीम है, उनके साथ इस एपिसोड को शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मज़ेदार एपिसोड भी है, फनी एपिसोड है, एंड आई होप दैट यू फील द सेम वे टू बिजनेस ब्रदर्स एक्सप्लेनिंग जुगाड़ू स्टाइल ऑफ बिजनेस, ताकि आप लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस खोल सके, बहुत सारे पैसे कमा सके, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ये है अनुभव दुबे ऑन द रणवीर शो हिंदी। दोस्तों कहा जाता है 1993 इज द ईयर ऑफ लेजेंड्स। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट दो 1993 के लेजेंड्स यहाँ प्रेजेंट हैं। अनुभव दुबे साहब ऑफ चाय सुट्टा बार, वेलकम टू द रणवीर शो।
थैंक यू रणवीर भाई,
कैसे हो भाई?
एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए
क्या फील हो रहा है यहाँ?
बहुत ही गजब की वाइब है। जो आपके बालकनी से व्यू है वही देख के मजे आ गए, वही देख के एकदम एनर्जेटिक हो गया वापस से।
आपकी स्माइल देख के मैं एनर्जेटिक हो रहा हूं।
थैंक यू।
इस स्माइल के पीछे का राज आपकी सोल है या आपका बिजनेस सक्सेस है, बताइए?
स्माइल के पीछे कुछ भी नहीं है, स्माइल के पीछे स्माइल है। मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था कि खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो खुश रहना। तो उसके पीछे कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हो, आपको खुश रहने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सिर्फ खुश रहना ज़रूरी है।
आप हमेशा इतने ही खुश थे?
ट्राई करता हूँ कि खुश रहूँ, मतलब मूवमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं भी होता हूँ कई बार तो, मतलब थोड़ा दूर आने के बाद में वापस से चिल हो जाते हैं।
बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स इतने खुश होते हैं, बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक सच्चाई है। देखो लोगों ने शार्क टैंक देख के ना बहुत ऐसे सपने देख लिए खुद के लिए, मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। बट कोई एंटरप्रेन्योरशिप के क्या बोलते हैं, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड स्ट्रगल्स, क्या बोल सकते हैं, डिफ़िकल्टीज नहीं जानते लोग। एटलीस्ट बॉम्बे में बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली होता क्या है, सैक्रिफाइसेस क्या इन्वॉल्व होते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स खुश नहीं होते, पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो।
अच्छे, मतलब बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है रणवीर भाई एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बोलता भी हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ फेरी टेल। लोगों को दिखता है ना बाहर से कि बहुत ग्लैमरस है स्टार्टअप में, बहुत ईजी अचीवेबल है, नहीं होता है। आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, विदाउट स्ट्रगल तो आपको मिलेगा भी नहीं। फिर आपकी, अगर आप चाहते हो आपकी सक्सेस स्टोरी लोग बुनाएं और सुनाएं, तो अगर स्ट्रगल नहीं हो तो सक्सेस स्टोरी में किक नहीं आएगी वो। तो स्ट्रगल तो बनता है।
व्हाट इज़ द व्हाई फॉर यू, आप क्यों कर रहे हो ये सब?
व्हाई एक गोल है, बाकी तो सब चीज़ उसको मीडियम है उसको अचीव करनी। सो द व्हाई इज़ हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस फॉर मी इज़ बहुत सारी चीज़ें। उसमें अगर एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट रखे मैं बताऊँ तो गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, as many as people as I can, not just employment, to impact their life, to change their life forever. देश को, इंडिया को प्राउड फील कराना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्राइंग टू डू दैट बाय सेलिंग कुल्हड़ टी टू द एंटायर वर्ल्ड।
कुछ 4-5 साल पहले मंक एंटरटेनमेंट और बिग ब्रेन और लेवल की शुरुआत से पहले मैं एक MBA स्कूल में गया था एक टॉक के लिए, और वहाँ मैंने, और किसी ने मुझसे पूछा कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप का वाई क्या है, मैंने भी एम्प्लॉयमेंट का, और फिर 2-3 प्रोफेसर एक एंटरप्रेन्योर भी, मतलब वो लोग जुड़ के खड़े हो गए और कहा कि नहीं नहीं ये गोल नहीं होना चाहिए, आप देश के लिए कुछ कर रहे नहीं हो, ऐसे ये मत सोचो कि 5-6 लोगों को नौकरी दे के आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जर्नी के दौरान, पर जर्नी के स्टार्ट में भी। तो ये मैं पूछना चाहूँगा, बिजनेस के स्टार्ट में आपने काफ़ी सारा पैसा रेज किया है, आपने काफ़ी सारे आउटलेट्स खोले हैं, आपके बिजनेस प्लान्स बहुत बड़े हैं, आप 28 ईयर्स के हो, अभी 29 ईयर्स के होने वाले हो इस साल, बट लेट्स गो बैक टू द स्टार्ट, आपकी विजन क्या थी यार? क्योंकि बहुत लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है, फिर से शार्क टैंक इंडिया थीमेटिक एपिसोड है ये, पर बहुत लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है अभी, बहुत लोग सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा लाइफ में, बिजनेस करूंगी लाइफ में, और रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं उन्हें, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स को जो 22 23 साल के, उनके लिए स्टोरी सुना दीजिए।
सो जब हमने चालू किए थे करीब 22 साल का था मैं, 6 साल पहले, तो विजन ऐसा था कि हम लोग सोच रहे थे करें क्या, बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब ये तो पता था कि हमको बिजनेस करना है, लेकिन क्या बिजनेस करना है। तो हम लोग ना, हम लोग ने अपने अपने, मैंने और आनंद ने अपने गाड़ी में 50-50 का पेट्रोल लगा, निकल पड़े कि यार चलो घूमते देखते हैं। चाय हमको समझ में, क्योंकि इट इज़ हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लानेट आफ्टर वाटर, हमको ये नहीं पता था, इतना बड़ा डेटा नहीं पता था, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, हालांकि हमको ये पता था कि हर गली में चाय बिकती है और चलती भी है, हर छोटी छोटी गुमटी भी चल जाती है। हम बोले ये तो ऑलरेडी चलने वाली चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपने थोड़ा सा एक एच पॉइंट क्रिएट कर लिया तो ये चीज़ चल जाएगी। तो वो चीज़ हमने पकड़ी, लेकिन हमारा जो विजन था ना वो ये था कि मेरा जो पार्टनर है आनंद, उसने बोला था कि क्यों यार मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी अपन लेते हैं। तो मैं बोला पहली बात तो यार भाई पैसे नहीं है अपने पास में कि अपन मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले पाएँ, सेकेंडली क्यों फ्रेंचाइजी लें अपन एक MNC कंपनी की, वाई नॉट टू क्रिएट आर ओन ब्रांड एंड देन फ्रेंचाइज टू अदर पीपल, लेट्स एक्सपैंड इंडियन ब्रांड टू द ग्लोबल मार्केट। सो देन वी स्टार्टेड दिस ब्रांड, हमने ब्रांड सोच के ही नाम रख दिया चाय सुट्टा बार।
आपने इंजीनियरिंग करी है?
नहीं,
जस्ट किडिंग, मैंने बताई
लेकिन रहा इंजीनियर्स के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें, हमने ब्रांड का नाम चाय सुट्टा बार रख दिया, फिर यू नो एक आउटलेट खोला चला, फिर सेकेंड ओपनिंग की, हमने एक ही साल के अंदर मतलब 4 महीने के अंदर ही हमने मुंबई में अपना आउटलेट खोल दिया था, मिनी मुंबई से मुंबई में आउटलेट खोल दिया
था। सब बूटस्ट्रैप था?
सब बूटस्ट्रैप, अभी तक हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं।
ओह ओके ओके, मुझे कहा गया था कि यू रेज मनी एज वेल।
वी रेज मनी विद आवर क्लाइंट, नॉट विद द इन्वेस्टर्स।
ओके,
बहुत अंडररेटेड है बूटस्ट्रैप, लेकिन मुझे लगता है कि बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
और अब कितने आउटलेट्स हैं इन टोटल?
इन टोटल वी क्रॉस 250 प्लस आउटलेट्स,
और सब बूटस्ट्रैप्ड है,
सारे बूटस्ट्रैप्ड है।
पहले कॉन्टेक्स्ट दीजिए, बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है?
बूटस्ट्रैप का मतलब ये है कि आप बिना किसी से पैसे उठाए, VC से, एंजल इन्वेस्टर से किसी से पैसे उठाए, प्रॉफिटेबल बन के काफी टाइम तक सस्टेन करो, दैट इज बूटस्ट्रैप। तो
जो मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस करने का सही तरीका होता है, अकॉर्डिंग टू
इट इज अमेजिंग तरीका, उससे अच्छा तरीका ही नहीं है। अगर आप बूटस्ट्रैप हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, इस देखिए मैं बताता हूँ, अगर कोई फंडेड है इसका मतलब है कि वो इट इज ट्रस्टेड बाय बंच ऑफ इन्वेस्टर्स या ग्रुप से, आपका अच्छे ऑडिट हो गई है वो मान लीजिए, लेकिन अगर शार्क टैंक जैसा है तो आपके ऑडिट भी नहीं हुई अच्छे से, आप तो आए अपने पिच के, आपको पसंद आया, आपको दे दिया। बूटस्ट्रैप में आप ट्रस्टेड हैं कस्टमर से, एंड यूजर से, मतलब आप चल रहे हैं, आपको सालों साल कोई नहीं रोक सकता है, आपको थोड़ा सा इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन करना पड़ेगा, आप निरंतर चलोगे, आपको रोक नहीं सकता है। और अगर आप फंडेड हो सकता है आप चलो, हो सकता है ना चलो, और आपके ऊपर एक लायबिलिटी है और आप अपने शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हो, तो मुझे लगता है बूटस्ट्रैप बहुत ही अच्छा तरीका होता है कोई भी बिजनेस करने का।
और बहुत सारे लोगों का की वजह, एंटरप्रेन्योरशिप करने की वजह होती है कि नहीं मुझे बॉस नहीं चाहिए लाइफ में, ये वो, दैट्स फॉर सम पीपल। पर अगर आप मनी को रेज करते हो, अगर आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, वो एक तरह का बॉस एम्प्लॉई सिचुएशन भी बन जाता है।
ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में भी जब वो आते हैं ना, कोई भी फंडिंग लेके आता है, तो आपके मैनेजमेंट में भी दखल होता है, मतलब वो पॉजिटिव दखल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दखल होता है। तो हो सकता है कि आप अपने विजन से डेविएट हो जाते हो। कई बार क्या रहता है कि कई स्टार्टअप सिर्फ पैसा छापने के लिए नहीं आते, वो आते हैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, उनका एक मिशन रहता है, एक विजन रहता है, वो थोड़ा बहुत डेविएट हो सकते हैं उस चीज़ से।
तो अब आपकी विजन क्या है आफ्टर 250 आउटलेट्स?
टू एक्सपैंड दिस आउटलेट, हम लोग का विजन है कि इंडिया की जो मिट्टी है ना, जब भी कोई चाय पीना है उस दुनिया में, ये इंडिया की मिट्टी को चूमे, और ये जो मिशन है हम लोग, मैं कभी भी स्टार्टअप नहीं, ये जो मिशन है, हम लोग पूरे हर एक देश में अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं, और टी बीइंग द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस, जो भी पिए हमारे देश को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारे देश की मिट्टी को भी चूमे, तो ये हम लोग का एक सपना है।
क्रेजी. आपकी गर्लफ्रेंड है?
ऑन कैमरा बताना है.
गर्लफ्रेंड है ब्रो. क्योंकि मेरे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. बताइए.
हाँ, मेरे को भी नहीं मिल रहा है.
सच में ये ओके. आई थिंक द क्वेश्चन इज मोर कि आपके पास टाइम है लाइफ में. मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है लाइफ में भाई. और ये भी एक फैक्टर है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते विथ रिस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योर्स. पता है, जब मैं किसी नॉन एंटरप्रेन्योर को ये कहता हूँ ना कि यार टाइम नहीं है लाइफ में, आई कांट मेंटेन अ रिलेशनशिप, तो लोग ऐसे चलते चलते रुक जाते हैं और मुझे देख के कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़. अगर चाहिए तो आप टाइम बना सकते हो, बट दैट्स नॉट ट्रू. और मेरे काफ़ी सारे रिलेशनशिप टूटे भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से. आपने TVF पिक्चर्स देखी?
हाँ.
उसमें जैसे वो ब्रेकअप हो जाता है नवीन कस्तूरिया का, तो मेरी वही सीन हुई है दो तीन बार. आप बताइए.
मेरी तो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. ट्राई टू मेंटेन रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मेड बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशंस, फ्रेंड्स वाला रिलेशंस, और अपने मम्मी पापा के लिए जो भी करना है. सो आई ट्राई टू डू इट, और करता भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम निकाल सकूँ टाइम निकाल भी लेता हूँ. काफ़ी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम जाती थी, लेकिन जब थोड़ा सा चीज़ों को ऑटोमेटिक गियर में आप डाल देते हो, एक अच्छी टीम बन जाती है, तो काफ़ी चीज़ें वो संभाल लेती है. जैसे कि अभी 64 बार के लिए मेरा फ्रंट में आना जरूरी है, जो बैक एंड की टीम्स हैं, जो टीम है 70-80 लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, संभाल लेंगे.
सॉरी, वो वाइब फील हो रही है.
आपको रहना पड़ेगा क्योंकि आपका फेज है.
मजा आ रहा है आपसे बात करके. नहीं, आई हियर यू ब्रो. आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जो फॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन मैंने बहुत जल्दी सीख लिया लाइफ में. आई थिंक बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर, मनीष पांडे जैसे इन्फ्लुएंसर्स. पर बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली डेलीगेशन सीखते ही नहीं. आई फील प्रॉब्ली टिल एज 28 टिल एज 30. काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, बट दे आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग दे आर डूइंग. द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम इज वो लोग डेलीगेट करते ही नहीं. और आई डोंट नो व्हाई, पर इंडिया में डेलीगेशन की स्किल भी कम है और डेलीगेशन का कल्चर भी कम है. आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा वो कंट्रोल फ्रीक कल्चर रहता है इंडियन बिजनेस में. आपने देखा? मतलब ऑन एन एवरेज, मैं हर बिजनेस की बात कर रहा हूँ, MNCs ही नहीं, कॉर्पोरेट्स ही नहीं, स्टार्टअप इकोसिस्टम ही नहीं, सारे के सारे, जो किनारा स्टोर आप देखते हो, कोई भी रेस्टोरेंट, बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हो
डेलीगेट कर देते हैं अपन उस चीज़ को.
मतलब टीम के थ्रू करते हैं. बट बहुत, ये कहने को बहुत आसान है, पर एक्चुअली करने में इट्स डिफिकल्ट.
बहुत, मतलब आप जब भी डेलीगेट करते हो तब वो आपको मेक श्योर करना रहता है कि उनको आप अथॉरिटी दे रहे हो, साथ में उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड. अगर आप अथॉरिटी दे दोगे तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा, फिर किसी के अपने जूनियर्स के ऊपर ज़्यादा चलाएगा. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एक बैच बना रहेगा, अगर वो भी मिशन ओरिएंटेड होगा तो वो काम करेगा. तो मेक श्योर कि हम लोग जितने लोगों को भी एम्प्लॉय करते हैं ना, तो वो मिशन ओरिएंटेड होने चाहिए वो लोग, और उनका विजन होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ करना. अगर वो छाती में आपके ब्रांड का नाम पहन के चल रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि वो उस ब्रांड के लिए काम करे. अगर मैं बोलता हूँ एक 64 बार का एक बंदा अगर वहाँ पे काम कर रहा है, तो ये छाती में पहन के चल कि प्लेनेट की सबसे बड़ी चाय कंपनी का पहन के चल रहा है और ये देश के लिए काम कर रहा है. तो एक पैट्रियट फीलिंग आनी चाहिए, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं और एक विजन के लिए भी आनी चाहिए. तब वो जाके अच्छा सा काम कर रहा है, तब आप इजिली काम डेलीगेट कर सकते हो, तभी आप जल्दी से वो चैनल्स बना सकते हो सबऑर्डिनेट से, मतलब हम हायर मैनेजमेंट से सबऑर्डिनेट्स तक के लिए.
आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है?
मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा रियल इस्टेट में हैं और मेरी मम्मी हाउस कीपर है.
ओके. फिर आपने बिजनेस कैसे सीखा?
बिजनेस जुगाड़ से रणवीर भाई, बहुत सारी चीज़ें.
क्योंकि आपने इंजीनियर्स के साथ टाइम बताया.
स्कूल में ही ना थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक था, तो वो बेचता था.
ठीक ठाक शब्द समझे,
मतलब एक तो ए से मेरा आता था ना, तो रोल नंबर में आगे बैठ जाता था मैं. तो जो पीछे वाले रहते थे ना, तो उनको चीटिंग कराने के लिए मैं टैटू एक्सचेंज करता था. टैटू या नॉन डेस्क की रबड़ आधी कटी हुई, नटराज की पेंसिल, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करता था. आई गॉट टू नो कि यार मैं एक्सचेंज करने के लिए धंधा कर सकता हूँ. फिर थोड़ा बड़े हुए तो मोबाइल चेंज करने लगे, सेकेंड मोबाइल कुछ दिन चलाने के लिए लोग दे देख के वो करने लगे, तो गॉट टू नो कि बिजनेस कर सकते हैं. क्योंकि पॉकेट मनी भी मेरे को फ्रेंड्स की मिल जाती थी कि यार तू ये पैसे लगा दे हमारे, और हम उससे उनके पैसे से मैं मोबाइल खरीदता था सेकेंड हैंड. और उनको चलाने के लिए भी दे देता था और फिर वही मोबाइल बेच के मैं प्रॉफिट भी कमा लेता था. तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को फंडिंग भी मिल सकती है और उस फंडिंग से मैं पैसे भी कमा सकता हूँ और अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश कर सकता हूँ समोसा और पेटीज खिला के.
क्या किया उन पैसों के साथ
जो उससे मिले
उस टाइम के पैसे?
उस टाइम के पैसे, उस टाइम के पैसे तो उड़ा दिए.
मेरे को लगा ओके
गर्लफ्रेंड के लिए रिंग ले ली. पहली मुलाकात में रिंग दे दी. बाद मालूम पड़ा भाई पहली मुलाकात में कोई रिंग नहीं देता है, वो भी इतनी महंगी. तो वो सब किस्तें लौटाई जो पुराने दोस्तों को देनी थी पेट्रोल वगैरह के जो स्कूल लेके जाते थे. सो वो सारी चीजें.
पर जब आप चाय सोटा बार स्टार्ट करने जा रहे थे क्या मेंटालिटी थी आपकी? मतलब आपकी फैमिली क्या कह रही थी आपसे? आपके रिलेटिव्स क्या कह रहे थे आपसे?
पता ही नहीं था. मैं तो मैंने बताया नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ. उनके हिसाब से तो मैं पढ़ रहा था अभी भी दिल्ली में.
ये स्टोरी सुनाई है क्या हुआ था?
तो स्टार्टिंग में मैं गया UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली. जब दिल्ली गया तो आनंद का मेरे पास फोन आया. आनंद मेरा फ्रेंड है बचपन का. बोला यार यहाँ पे कुछ नया बिजनेस करते हैं. अपन ने डिसाइड किया था स्कूल से निकलते टाइम कि हम लोग बिजनेस करेंगे. तो बोला ठीक है मैं आता हूँ. तो मार्केट में हम लोग गैप ढूंढ रहे थे, प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है.
पर कैसे ढूंढते हैं?
हम लोग घूम रहे थे. हम लोग ऐसे नहीं नॉर्मली घूम रहे थे.
okay.
जबकि प्रॉब्लम आप घर पे बैठ के भी एनालाइज कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से. लेकिन हम लोग का ऑब्जर्वेशन थोड़ा फिजिकल था क्योंकि अभी भी हम लोग ऑफलाइन बिजनेस में है.
एक मिनट पॉज. फिर एज अ 28 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर आप अब क्या करते हैं? घर पे ही बैठते और खुद के लाइफ में गैप्स को नोटिस करते.
हाँ, ऑब्जर्वेशन इज द की.
ओके.
अगर आपको गैप फाइंड करना है कोई धंधे का, अगर आपको करना है कोई धंधा करना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ धंधे को कभी भी ना ऐसे नहीं कि जो आपको पसंद है वो करो. धंधे में जो मार्केट की डिमांड है आपको वो एनालाइज करनी पड़ेगी. वो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो. कि क्या डिमांड
है गूगल के थ्रू या सिर्फ ऑब्जर्वेशन या दोनों?
गूगल के थ्रू. मतलब अगर आपको किसी चीज में एक स्टिक करना है फिर आपको सर्वे करना पड़ेगा. फिर आपको प्रॉपर R&D लगेगी. तो R&D के लिए गूगल आपको लगेगा. आपको ऑफलाइन सर्वेस भी लगेंगे.
और ये सारी चीजें आप यूट्यूब से सीख सकते हो, गूगल से सीख सकते हो.
रणवीर भाई के शो में आके सारी चीज मिल जाएगा कॉन्टेंट.
डू वे साहब. पर ठीक है बट कंटिन्यू स्टोरी अनपॉज.
सो ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है. एक बार आप ऑब्जर्वेशन कर देते हैं फिर आपको डिसाइड करना था कि आपको कितनी कैपिटल लगेगी. फिर कैपिटल आपको रेज करनी पड़ती है. अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है ठीक है, नहीं है तो आप रेज करो. आप रेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. घर पे भी दोस्तों से मांग सकते हो, रिलेटिव से मांग सकते हो, नहीं दोस्त से मांग लो. जैसे मैंने अपने हार्डवेयर, हम लोग के यहाँ पे पैसे नहीं थे बोर्ड वोर्ड लगाने, पेंट वेंट करने के लिए, तो हम अपने दोस्त से लेके आ गए कि भाई अभी तू पेंट दे दे, तेरा वैसे भी खराब हो गया ये. वो लोग मिक्स करते हैं पेंट को तो कहीं खराब हो जाता है, हम वही पेंट पोत दिए थे. मतलब आप क्रेडिट में भी अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है तो यू कैन यूज दैट क्रेडिट.
डू यू थिंक बिजनेस इज पीपल स्किल्स मोर देन इट इज प्रोडक्ट स्किल्स?
ऑफ कोर्स.
बताइए.
हम लोगों ने एक वर्ड क्रिएट किया, कॉइन किया, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट. वो हमने कैसे बनाया? हम लोग ने जब हमारी पहली दुकान खुली थी तो मैं दोस्तों से बहुत रिच हूँ, तो मेरे दोस्त बहुत सारे हैं. मतलब बचपन से हॉस्टल में तो बहुत सारे दोस्त बन गए. तो जब हमने पहली शॉप खोली तो हमारी दुकान चलनी नहीं थी. तो मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया कि आ जाओ. बगल में वैसे भी गर्ल्स हॉस्टल था तो वो आ भी गए. गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर में फ्री चाय के चक्कर में आ गए. तो इतनी भीड़ देख के ना लोग भी आ गए. बोले अरे क्या इतनी भीड़ लगती है इनके यहाँ पे. कुछ ना कुछ तो गजब देता जो इतनी भीड़. उनको नहीं पता है कि वो मेरे ही दोस्त हैं, फोकट में बैठे हुए इसलिए भीड़ लग रही है. तो ये लोगों के अंदर एक साइकोलॉजी क्रिएट हो गई कि यार ये क्या है. सो आपको लोगों को ना समझना बहुत जरूरी है. वो जैसे समझे उसके हिसाब से पासा फेंकना लोगों के हिसाब से. तो आपको डिमांड जनरेट करने के लिए उनको पहले लोगों को समझने के बाद में आपको प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना पड़ता है. प्रोडक्ट आपका सेकेंडरी होता है. आपका मेन टारगेट आपका कस्टमर होना चाहिए. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ वी सेल वाइब. प्रोडक्ट हमारा कुछ भी नहीं है, वाइब है कि अच्छे गाने बज रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, कुल्हड़ चाय है. तो
साइकोलॉजी की वजह से बिक जाता है.
साइकोलॉजी की वजह से बिक जाता है. अब देख मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं. हम लोग दिखते भी हैं मार्केट में. अभी रणबीर भैया के शो में हम लोग दिख रहे हैं तो लोग बोलेंगे यार ये काम करें. फिर लोग जानते हैं हमारी स्टोरी, जानते हैं कि हमने कैसे स्टार्टिंग से कैसे काम किया है. ग्लोबल चले गए ना, दुबई वाला टैग ग्लोबल वाला टैग तो चलो इंडिया में भी मिल रहा है. अपना देसी ब्रांड है तो क्यों विदेशी ब्रांड में जाएं?
आई फील कि कोई भी स्टार्टअप के अर्ली स्टेजेस में ना वो पूरी एनर्जी बेस्ड स्टोरी होती है एक. पर मिडिल स्टेजेस में कंपटीशन का एक एलिमेंट आ जाता है. तो अभी क्योंकि और भी ब्रांड्स हैं इंडिया में सिमिलर जो लोग मानेंगे कि आपका आपके राइवल ब्रांड्स हो सकते हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या है आपका?
एथिकली बात करता हूँ पहले तो.
श्योर.
कंपटीशन इज़ वेरी गुड फॉर अस फॉर एवरी वेंचर क्योंकि वो आपको लथार्जिक नहीं बनाता. आप एनर्जेटिक रहते हो, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहते हो, नहीं तो एक तो वो, सेकेंडली आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, कस्टमर्स को नया मिलेगी नहीं. आप अपना माल 10 का बेच रहे हो, 1000 का बेचो, एक लाख का बेचोगे तो भी लेना पड़ेगा. वो होता नहीं है जनरली मार्केट में, बहुत कम होता है. तो कॉम्पिटिशन गुड, क्योंकि आप इनोवेट करते हो और कॉम्पिटिशन से आपको लर्न करना चाहिए. अब सेकेंडली मैं प्रैक्टिकल चीज़ में आता हूँ, बिकॉज हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज है हमारे पास में. हम लोग ऑलरेडी 250 ब्रांड में, हमारे पास डेटा है कंज्यूमर्स का, हमने इवॉल्व किया है, हमने कॉपी नहीं किया है ब्रांड को, हम इवॉल्व किया. हमने 7 रुपए की चाय से, कुल्हड़ चाय से स्टार्ट किया, तो वी नो कि हम लोग को कैसे चीज़ ऐड कर कर करके आगे बढ़े. वेयर जिन लोगों ने सिर्फ कॉपी किया है, दे डोंट नो कि क्यों हमने वो चीज़ एलिमिनेट की. वो आपने बल्ब वाली थ्योरी सुनी होगी ना, कि 1000 इन्वेंशन के बाद में उसको एक चीज़ सही मिली थी जिससे उसने बल्ब बनाया था. सो बेसिकली जो हमने 999 जो हम लोग नहीं किया ना, वो उनको नहीं पता है. तो हम लोग के पास एडवांटेज है कि हमको क्या गलतियाँ नहीं करनी है. सो ये और बाकी, सो हम अपने कॉम्पिटिशन से सीखते ही आते हैं हमेशा और वेलकम करते हैं. इट्स वेरी बिग मार्केट रणवीर भाई. चाय वाले अगर हमारे जैसे 75 भी आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, सबका पेट चलेगा, उनका भी चलेगा, हमारा भी.
इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है,
बहुत बड़ा, बहुत बड़ा.
ये इंडियन मार्केट की एक यूनिक बात है जो ऑनेस्टली मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिला हूँ, बट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होते हैं. आई थिंक वो भी हमारी कल्चर की वजह से, शायद हिस्टोरिकली इंडिया में इतने इन्वेजन्स हुए इसलिए हमारे कल्चर में वैसी वो बात बन गई है कि नहीं, कम्पीट करो, डिफेंड योर सेल्फ, ये वो. और बचपन से हमें कहा जाता है वो शर्मा जी के बेटे की मेंटालिटी, वो सब मेंटालिटीज़ है हमारे कल्चर में. पर इंडिया की यूनिक बात है कि बहुत बड़ा मार्केट है एंड देर इज़ रूम फॉर एवरीवन टू विन. और लोग ये भी नहीं जानते कि इंडिया का मार्केट सिर्फ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, दुबई हो सकता है. और USA में भी अब इंडिया एक कूल कल्चरल पावर बन गया. आप हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में? हार्ड पावर मतलब मिसाइल्स और गन्स, और सॉफ्ट पावर मतलब
लिटरेचर, सॉन्ग,
कल्चर, फूड, योगा, ऐसे सब चीजें. और आई थिंक इंडिया का अभी टाइम आ चुका है, अगले एटलीस्ट 50 सालों के लिए इंडिया का सॉफ्ट पावर का एक पीक है. तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बाद बहुत बड़ा मार्केट है खेलने के लिए. बट एनीवे, दैट्स,
अगर मैं FNB की आपको इसमें एक ऐड करूं, FNB में, क्योंकि हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, इंडियन क्विजिन की इतनी रिस्पेक्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. इवन द पाकिस्तानी पीपल आर पुटिंग आर नेम, मतलब इंडिया के नाम से वो ब्रांड चलाते हैं. तो और वैसे भी जो हम लोग का टेस्ट बड्स है ना, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ का टेस्ट बड हमसे मैच करता है बहुत ज़्यादा. तो जो भी हम लोग चीज़ यहाँ पे इंडिया बनाते हैं, वो लोग आराम से पी सकते हैं, खा सकते हैं. जैसे पाकिस्तानीज़ हो गई, बांग्लादेशीज़ हो गए, इवन श्रीलंका का टेस्ट भी हमसे बहुत ज़्यादा मैच करता है. तो वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाया जाता है, लंदन में आप देखिए इंडिया के ब्रांड भतेरे हैं. और लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इवन दी नॉट जस्ट देसी, गोराज प्रेफर इंडियन ब्रांड्स. तो बहुत अच्छा चल रहा है सॉफ्ट पावर में, तो फाड़ रहा है वैसे भी इंडिया.
सिर्फ इंडिया में, क्योंकि आप इतने सारे शहरों में आपने एक्सपैंड किया, अलग अलग शहरों के बारे में आपने क्या सीखा और अलग 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 स्टेट्स के बारे में आपने क्या सीखा, नॉट जस्ट टेस्ट वाइज, एवरीथिंग एज कस्टमर्स, एक एक जैसे ही है सब इंडियंस?
नहीं, हमारे यहाँ पे एक कहावत है रणवीर भाई कि पग पग में ना भाषा और स्वाद दोनों बदलता है. तो लोग
इंडिया के अंदर
तो टेस्ट, हम लोग बेसिकली टेस्ट के लिए काम करते हैं ना, टेस्ट और लोगों का देखने का नज़रिया, प्रोडक्ट का देखने का नज़रिया. कई बार लोग ऐसे आ जाते हैं कि यार बार है, चाहे सुट्टा बार है, तो शायद सिगरेट बेचता होगा, दारू बेचता होगा, जबकि हम लोग नहीं बेचते हैं, तो लोगों को पता नहीं रहता. तो लोग इनिशियली ना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे वहाँ पे नहीं जाएंगे.
जैसे बियर बाइसेप्स, सेम पैरेलल बताइए.
तो ये मैं सीख रहा हूँ आपसे कि बीच बीच में कैसे अपने ब्रांड को डाला.
चाय सुट्टा बार, चाय सुट्टा बार.
तो
सॉरी, वाइब में फंस गए फिर से, मेरी वाइबी पॉडकास्ट बोलिए.
तो हर जगह पे ना लोग चेंज होते हैं, उनके परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं हर जगह पे. टेस्ट ऑब्वियसली चेंज होता है, कहीं जहाँ पे लोग चीनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कहीं पे कम प्रेफर करते हैं, वैसे कहीं पे लोग, कई जैसे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो लोग अलग अलग रहते हैं. अगर इंट्रा बॉर्डर की बात करूँ मैं, तो जैसे कि हम लोगों ने दुबई में खोला, सो वन पर्सन आस्क मी के आप इंडिया में तो चल लिए हो, क्या आप दुबई में चलोगे? तो मैंने बोला कि यार हम लोग इंडिया में ना घाट घाट का पानी पिया हमने, हर छोटे छोटे शहर में खोला. मैंने यही उसको दोहा सुनाया जो मैंने आपको बताया. बोले कि यार ये है ही कितना बड़ा दुबई, हमारे जबलपुर जितना है, हम यहाँ पर भी चल जाएंगे. और पहले दिन पहले दिन हम लोग का जिस दिन आउटलेट खुला, हम लोग वहाँ पे कुछ भी फ्लैश नहीं आप कर सकते हो, इकोनॉमी डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी रहती है अगर आप कोई चीज़ फ्री सर्व करते हो, बहुत स्ट्रिंजेंट यू नो, नया देश था हमारे। लेकिन पहले दिन ही हमारे यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग आए, नॉट जस्ट फ्रॉम दुबई बल्कि फुजैरा, अजमान, आबू धाबी, तमाम जगह से आए थे। इट वॉज अ ग्रैंड ओपनिंग फॉर अस। सो मार्केट को समझना आना चाहिए, हर जगह पे मार्केट अलग अलग रहती है, लेकिन आप लोगों को समझ लिए ना, अगर बेसिक फंडा समझ लिए ना लोगों के, तो आप लोगों को खेल जाओगे।
ओके, चलो एक और लेयर के अंदर जाते हैं, लोगों को समझते कैसे, नॉट जस्ट फॉर चाय सोटा बार, लाइफ में लोगों को समझते कैसे, क्योंकि आई फील ये असली MBA होता है। पर आप बताइए।
कुछ बेसिक फंडा होता है लोगों के, लोग कितने भी ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट्स लेके आए, लेकिन उनका कोई ना कोई पेन पॉइंट होता है, दैट इज इमोशनल कैच।
और हर इंसान के लिए कोई अलग अलग पेन पॉइंट होते हैं।
बिल्कुल होते हैं।
ओके,
हर लोगों के अलग अलग पेन पॉइंट्स होते हैं। आपको वहाँ के कल्चर में पहले समझना पड़ेगा कि लोग किस चीज़ को ना इमोशनली किस चीज़ से जुड़ते हैं। कई लोग होते हैं जो उस देश के लिए जुड़ जाते हैं, कई लोग खाने से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, कई लोग यू नो किसी स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, जैसे इंडिया में क्रिकेट, इट्स नॉट लेस देन अ रिलीजन। तो अगर आपको किसी चीज़ को टारगेट करना है, किसी चीज़ को मार्केट करना है, तो कीप क्रिकेट इन सेंटर। अगर आप इंडिया मार्केट की बात करें, आप दूसरे मार्केट में जाएंगे तो वहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा, लोग किस चीज़ के इर्द गिर्द हैं, उनके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, किस तरफ से उनका इमोशनल टच है। तो अगर आपने वो पकड़ लिया ना, तो आपको एक तो आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत ईजी हो जाएगा, मार्केटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और मार्केटिंग में अगर आपने जीत लिया, तो आपका काम हो गया आधे ज़्यादा।
क्या होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट?
प्रोडक्ट प्लेसमेंट ये होता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे, किस जगह पे, किस टाइम पे रहना चाहिए, उसका एक्सपोजर कैसा रहना चाहिए। बेसिकली ऑफलाइन की बात करें तो मेरी शॉप कहाँ पे होनी चाहिए, तो देयर आर 1000 पैरामीटर्स कि यहाँ पे छाया होनी चाहिए, यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, कॉर्नर होनी चाहिए, तो दो जगह से एक्सपोजर मिलेगा। सो दैट इज़ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट में ये भी आता है कि कैसी चाय, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो जैसे अगर वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो मैं दूध वाली चाय नहीं दे सकता, क्योंकि लो लैक्टोज टॉलरेंट रहते हैं, दूध से एलर्जी रहती है, तो वाटर बेस्ड टी करनी पड़ेगी।
आई थिंक ये बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग का एक एस्पेक्ट होता है, और बेसिकली ये मैंने बहुत बार इस पॉडकास्ट पे भी कहा है कि गुरुकुल सिस्टम में, इंडिया के पुराने गुरुकुल सिस्टम में, पहला सब्जेक्ट जूनियर केजी का सब्जेक्ट होता था, पूरे साल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता था जिसका नाम था आन्वेक्षिकी। उसका बेसिक मतलब है एक ग्लास को देख के सोचना कि ये ग्लास का कलर ये क्यों है, शेप ये क्यों है, इसकी फील कैसी है, ये टेबल ऐसा क्यों है, टेबल को हम अगर ऐसे बदलेंगे तो क्या बेहतर हो जाएगा, ये पेंटिंग ऐसी क्यों है, पूरी दुनिया को एक डिज़ाइन थिंकिंग के नज़रिए से देखना। पर यूरोपियन इंपीरियलिज्म जब हुआ इंडिया में, तो उन लोग ने आन्वेक्षिकी को भी सॉर्ट ऑफ हटा दिया साइड पर, और गुरुकुल सिस्टम को ऑब्वियसली हटा दिया। अभी आन्वेक्षिकी का राइज फिर से हो रहा है, पर स्कूलिंग में नहीं, हमारे एडुकेशन सिस्टम में नहीं, पर कंटेंट के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू। बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स में भी हमें दिखता है कि जो नई जनरेशन आ रही है कंटेंट क्रिएटर्स की, उन्हें ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस एडिटिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है, जो मोस्टली हमारे एज के एक्सपीरियंस एडिटर्स को पता रहता है आफ्टर ईयर्स ऑफ एडिटिंग। पर इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन से उन चीज़ों को सीख लिया, दैट्स एन इम्पैक्ट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। तो आई फील कि ओवरऑल इंडिया में डिज़ाइन थिंकिंग की नॉलेज ज़्यादा बढ़ रही है, और उसका एक एस्पेक्ट शायद ये है जो आपने कहा प्रोडक्ट प्लेसमेंट, मतलब अगेन साइकोलॉजी को समझना और
क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं।
और ये मेक और ब्रेक स्किल होती है बिजनेस में। देखो मैंने खुद ऑनेस्टली शार्क टैंक इंडिया देखा नहीं था ज़्यादा, बट आई थिंक देर वर डिज़ाइन थिंकिंग एस्पेक्ट्स विच अपील टू पीपल ऑन शार्क टैंक इंडिया ऑल्सो, कि यार लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी बिजनेसेस बना सकते हैं। बट डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी स्किल होती है जो एज 22 के बाद इंक्रीज होते जाती है, अगर आप ऑब्जर्वेंट रहोगे तो। पर अगर आपने लाइफ में हार मान ली ना कि अभी यही करना है, यही एक ही जॉब करना है लाइफ भर, या एक ये छोटा बिजनेस चलाना है लाइफ भर, आपकी डिज़ाइन थिंकिंग कभी इंक्रीज़ नहीं होगी। पर आपने कभी सोचा डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में?
मुझे लगता है जो आप बोल रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के पास डाइवर्सिफिकेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बिजनेस में ना, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो एक टाइम के बाद ना आदमी एक पल में थम जाता है कि यार यही जीवन चल रहा है, इसी में चलने दो। लेकिन कभी भी पड़ाव कैसा भी ऊपर नीचे आ सकता है, जैसे अगर कोई आदमी थम गया जॉब पे कि यार मेरे को जॉब ही करनी है जीवन भर, तो वहीं पे रुक जाएगा। डाइवर्सिफाई नहीं किया उसने, रिस्क नहीं लिया लाइफ में कि यार चलो एक बिजनेस भी करके देखते हैं, एक कुछ नया स्विच करके देखते हैं, शायद अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, तो वो वहीं पटक जाएगा। उसके लिए पहले उसको वहाँ पे ऐड करने के लिए पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या मैं इस लायक हूँ। और वो ट्राई करेगा तभी उसको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं इस लायक था कि नहीं था।
ये इन अवे खुद की लाइफ की आन्वेक्षिकी होती है,
बिल्कुल,
एज इन खुद की लाइफ पर डिजाइन थिंकिंग अप्लाई करना। आप करते हो ऐसे? मतलब मोस्टली हर कोई एंटरप्रेन्योर करता है, इवन एट एज 28-29 आप खुद की लाइफ को ऑब्जर्व करके क्या सोच रहे हो, आपको क्या बदलना है खुद के बारे में, खुद की जर्नी के बारे में, खुद के बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हो?
मेरा ना एक पर्टिकुलर एक गोल है, मैंने जैसे बोला ना पहले, दैट इज़ हैप्पीनेस। उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं। जैसे कहीं पे मेरे को जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे को लोखंडवाला जाना है, तो एक रास्ता होगा, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो मेरे को दूसरी गली पकड़नी पड़ेगी, लेकिन मेरा अल्टीमेट एम वही है, दैट इज़ हैप्पीनेस। टू अचीव दैट हैप्पीनेस आई माइट हैव टू चेंज द वेज, बट लेकिन मेरे को पहुँचना वही तक है। तो उसके कई बार वेज रहते हैं, एक बार ये है कि चलो पैसे कमा लें, कमा लिए ठीक है, लोगों का भला कर दिया ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास में उसी अचीव उसी हैप्पीनेस को बरकरार रखने के लिए? आप या यही दोनों चीज़ करते रहिए, थर्ड वे भी है कि जिससे आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, इट माइट बी स्पिरिचुअलिटी कि जिस चीज़ को मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया तो मैं उधर जाऊँगा ये करने के बाद में। सो मैंने एक बुक पढ़ी थी, योर नेक्स्ट 5 मूव्स, तो उसमें आपको हर अपने 5 मूव्स सोच के रखनी रहती है। तो मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया, नेक्स्ट 5 मूव्स को मैं अपने 5 बेसिकली गोल्स बना दिए कि मेरे को ये करना है लाइफ में, जिसमें कई चीज़ मॉनेटरी ड्रिवन है, कई चीज़ स्पिरिचुअल ड्रिवन है, कई चीज़ इमोशनल ड्रिवन है मेरी, तो वो ऐसे बना के मैं चलता रहता हूँ। वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम।
अब क्या है वो 5 चीज़ें क्या है अब?
अभी ये है कि एक तो मम्मी पापा के साथ काफ़ी टाइम मुझे रहना है। मुझे अब मेरे यहाँ पे जितने भी बहुत इनिशियली एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और एक बड़ा ऑफिस बना रहे हैं हम लोग, उस चीज़ में चल ही रहा है काम। फिर फॉरेन ट्रिप सारी करनी है, आपका शो था वो हो गया।
मैं बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड हूँ, मुझे मैं सोच नहीं सकता रिस्पॉन्स के बारे में अभी। नहीं बट नहीं, इट्स नाइस सर। किसने लिखी थी वो किताब? Next five moves.
Author का नाम बोलिए।
But आप देखो honestly आप फिर भी आप कह रहे हो कि आपको खुश होना है। आई फील कि आप ऑलरेडी खुश हो, और वो कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। तो एटलीस्ट जर्नी में आप डेफिनेटली हैप्पी हो।
100%।
मैं बता भी नहीं पा रहा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है मेरे दिमाग के अंदर। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं दुनिया के सामने ग्रो अप कर रहा हूँ, एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई एम नॉट द हैप्पीएस्ट, पता नहीं क्यों। और मैं वो हैप्पीनेस के पाथ्स ढूंढ रहा हूँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ रहा हूँ, जो पहले कर रहा था वो भी कर रहा हूँ। जस्ट समथिंग इज़ नॉट ओके, और मुझे खुद नहीं पता। ये फीलिंग आपको होती है कभी या हुई है?
होती थी कई बार हुई है। आप जब बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हो, बहुत सारे स्टफ आपके माइंड में रहते हो, आप भले अकेले रहोगे लेकिन वो चीज़ आपके बैक एंड माइंड में चलती रहेगी। तो पहले जितनी चीज़ आपको लग रही है ना कि आप इस चीज़ से ऑक्यूपाइड, पहले तो आप उसको निपटा लीजिए, पहले एकदम शांति हो जाइए उस चीज़ के। दूसरे काम से अपने आप को ऑक्यूपाइड करिए मत, थोड़ा खुद को समय दीजिए। जब आदमी खुद को समय देता है तो बहुत सारी चीज़ उसको मालूम पड़ती है। ऐसा रहता है ना कि आपके एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, से मेरे लिए नहीं, मेरी टीम के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे खुद के लिए, कि मेरे को उस लेवल तक पहुंचना है,
मेरे फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए। नहीं पर बताइए।
हाँ उस चीज़ के लिए भी।
उस चीज़ के लिए सिर्फ उसी चीज़ के लिए।
तो उस चीज़ के लिए आदमी खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कराने लग जाता है, तो उससे दब जाता है, उस चीज़ से उभरिए। जब आएगी आ जाएगी, आनी आपकी कहाँ जाएगी?
हाँ यार मैं बहुत अकेला हूँ आजकल। कोई भेज दो, भगवान भगवान जी प्लीज भेज दीजिए।
चाय सुटावर में बहुत सारी लव स्टोरी बनती है, आप जाइए वहाँ पे।
पियो वाइसेस फॉर फिलोसोफर। मजाक कर रहा हूँ। नहीं बट ओके, लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ये एक और एस्पेक्ट है, मतलब मेरे लिए ये पॉडकास्ट ना एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल MBA पॉडकास्ट है। क्योंकि जब मैं 22 साल का था तब मैंने बहुत अलग अलग इंटर्नशिप्स की थी कॉलेज में। एक इंटर्नशिप फैमिली के साथ भी की थी, और मेरे फैमिली में कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यार बिजनेस करना है लाइफ में पहले MBA करना पड़ेगा। ये झूठ होता है पहले तो, क्योंकि MBA अच्छा कोर्स है अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, अगर आपको हायर पे पैकेजेस चाहिए, बट अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है वो बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आप बिजनेस के बारे में सीख लोगे। तो मेरी क्वेश्चन यही है कि जब आप प्रैक्टिकल MBA को के बारे में सिखा रहे हो लोगों को, आई फील मेंटल टफनेस, मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करनी चाहिए. आई एम श्योर कि आपकी भी जर्नी हुई है पहले. हमेशा आपका गोल हैप्पीनेस ही था पहले से? पहले
इनिशियली तो पैसा कमाना था. मैं आपको सही बात बताता हूँ.
किस एज तक?
हमेशा ही मेरे को ये लगता था कि पैसा ही कमाना है, खूब पैसा छापना जीवन में, खूब गाड़ी, खूब अय्याशी, खूब बड़ा घर, फॉरेन ट्रिप्स, मतलब वो ना डेल मंजेरियन वाली लाइफ वो चाहिए थी स्टार्टिंग के एज में, अर्ली 20s टीनेजर्स में. मैं जब थोड़ा बहुत कमा लिया तो समझ में आया कि यार यही चीज़ नहीं होती है, इसमें कंप्लीट मज़े नहीं है, कुछ सेटिस्फैक्शन है जो लैक कर रहा है. सो मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन नॉट दी ओनली सेटिस्फैक्शन. तब फिर मैं दूसरी चीज़ को हंट करने लग गया कि किस चीज़ से मुझे अच्छा लगेगा. सो आई एक्सप्लोर्ड के शायद मुझे जैसे हम लोग ऑर्फन्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं उससे मुझे मिलेगा, शायद मुझे देश के लिए कुछ करने से अच्छा फील होगा ना, मेरे घर वालों को कैसे इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करूँगा मैं हर जगह, वहाँ से मुझे अच्छा फील होगा. तो
वो आपका आंसर है अभी?
हाँ जी.
कि इम्पैक्ट से आपको खुशी मिल रही?
बिल्कुल, इम्पैक्ट से खुशी मिलती है.
मे बी मेरे लिए वो आंसर है शायद. मे बी दैट्स व्हाट्स मिसिंग.
ट्रू.
जो आपने कहा कि एक पॉइंट था जहाँ पहले आपको लगा कि पैसे ही सब कुछ होता है, फिर पैसों को कमाने के बाद आपका वो स्विच हो गया. पर वो स्विच होने के जस्ट पहले आप अपने माइंडसेट में जाकर, तभी के माइंडसेट में जाकर ये बता सकते हैं कि पैसों की फीलिंग क्या होती है. जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो आपके दिमाग में बदलता क्या है?
जब बहुत सारे पैसे आपके पास में, जब पहला पैसा आता है, मैं आपको बताता हूँ ना, तो हम लोग को कैसा लगता था जब हमारे पास पहला पैसा आया ना, तो हम लोग लाइबिलिटीज इतनी सारी थी, टचवुड के हमारे पास लाइबिलिटीज थी, नहीं तो हम बह जाते कहीं पे. हमारे पास लाइबिलिटीज थी कि हमारे पास बोर्ड नहीं था लगाने के लिए, तो 2-3 महीने तक, 1.5-2 महीने तक हमारे पास बोर्ड नहीं था. तो हमारी लाइबिलिटीज थी हमको बोर्ड लगाना है, तो हमने पहला पैसा आया तो बोर्ड लगाया हम लोग.
फिर बूटस्ट्रैपिंग का कमाल होता है, जस्ट
बूटस्ट्रैपिंग का,
आपको डिसिप्लिन
रखता है. नहीं तो अगर आपके पैसा आता है आपको बिगाड़ देता है. फिर आपको चाहिए रहता है लग्जरियस ऑफिस, अच्छा ऑफिस चाहिए रहता है. फिर आपको IITs और IMBAs चाहिए रहते हैं दिखाने के लिए, मे बी आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए रहती है, आप शो ऑफ में चले, आप थोड़ा बिखर जाते हो. तो जब पहला पैसा आता है ना, तो आपको कैश बर्न से बचाता है अगर आपके पास लाइबिलिटीज. ये बूटस्ट्रैप का कमाल है. और अगर आपका पहला पैसा आया और आपने उसको बर्बाद कर दिया, आप ग्रो नहीं कर पाओगे. आपको फंडिंग लगेगी तभी आपको फंडिंग लगेगी. तो पहला पैसे की ना जो फीलिंग रहती है ना, बहुत ग्रैंड होती है, बहुत ग्रैंड होती है. आप उसको चाहे जला दो, चाहे उसको यूटिलाइज कर लो, जो फीलिंग होती है ना, वो ऐसा रहता है ना कि आप मूवीज में देखते हो ना, ये पहला पैसा मैं अपनी माँ के लिए कुछ खरीदूंगा या अपने पापा के लिए कुछ लेके जाऊंगा, वो फीलिंग होती है. वो आप ज़रूर, आपको नहीं लगेगा कि आप अभी खरीद पाओगे वो पैसे से, लेकिन यही पैसा आगे चल के जब पैसा बनाओ तब आप अपने माँ बाप को वो दे पाओगे जो आपने सोचा था कि अपनी कमाई से अपने माँ बाप को देंगे. इट इज़ अमेजिंग फीलिंग.
आई फील कि ये जो इम्पोर्टेंस गिवन टू मनी है, पैसों की इम्पोर्टेंस एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है आपके दिमाग में. एंड जैसे जैसे आप बेसिकली करियर में आगे चलते जाते हो, आपकी वो पैसों की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और अलग अलग फैक्टर्स से रिप्लेस हो जाते हैं. शायद फैमिली टाइम या फैमिली के लिए प्यार या रिलेशनशिप के लिए प्यार या जो भी स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं. पर किसी को इन चीज़ों को एक कॉलेज स्टूडेंट को सिखाना चाहिए, देश भर के कॉलेज स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में आपका बहुत अलग नज़रिया रहता है करियर्स को लेके, पैसों को लेके. कॉलेज में ना अक्सर हमें ये कहा जाता है कि यार दुनिया भर में, स्पेशली इंडिया में, बहुत सारे शार्क्स है, दुनिया आपको खा जाएगी. दो सवाल है आपके लिए. पहला, उस पैसों के इम्पोर्टेंस के स्पेस को किन किन चीज़ों ने रिप्लेस किया, और दूसरा सवाल वो शार्क्स के बारे में भी बता दीजिए. ये एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट को ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव्स मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में.
कॉलेज नहीं बल्कि स्कूल टाइम से मिलना बहुत ज़रूरी है. हम लोग के यहाँ पे ना एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंस, हमेशा ना उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स ही रहते थे, वो काउंट नहीं होता था कभी भी उस चीज़ का. उसको मैंडेटरी बना देना चाहिए पहली चीज़ तो, और उसको और इन डेप्थ सिखाना चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट लेके आना चाहिए, उसके बारे में सिखाना चाहिए. पर्सनल फिनेंस बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी लाइफ में कमाना आपको, उसके बिना काम ही नहीं चलना है. जो शार्क्स है ना आपको खाई जाएंगे. आपको पैसा तो कमाना ही है, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइज कैसे करना है ये सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है. कि आप पैसा तो कमा लोगे, उसको कैसे यूज़ करना है, आपके लिए सही यूजेस क्या है, एक कस्टम प्लान तैयार होना चाहिए बचपन से ही कि आपकी हॉबी क्या है, आप क्या चाहते हो, और उसी प्लान को आपको लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट करना चाहिए. छोटे छोटे मॉडिफिकेशन या फिर आप बड़े मॉडिफिकेशन भी आप कर सको, ये अमेंडमेंट्स आप कर सको, ये टीचिंग्स आपको मिलनी चाहिए. कंफ्यूज नहीं हो के ग्रो होना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ है या फिर पैसे ही छाप लिए तो आपका काम हो गया. नहीं, उसको यूज़ भी तो करना है. कैसे यूज़ करोगे? हमारे कहावत है कुबेर का धन भी रख रखे ख़त्म हो जाता है. तो आपके पास बहुत पैसा भी ना तो आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन द फंड यू हैव, आपको ये चीज़ सिखाना चाहिए.
पैसा बिल्कुल पेट्रोल की तरह होता है, इसलिए उसे रीयूज़ करना चाहिए. एनर्जी के एक मतलब लोग पैसे की तरह देखते हैं, पैसों को एनर्जी की तरह देखना चाहिए कि अगर आपके पास है तो इसको और ज़्यादा बढ़ा कैसे सकते हो आप, एंड दैट्स हाउ यू कंटिन्यूसली इंक्रीज योर मनी. पर दूसरा सवाल, ये जो शार्क्स की बातें करी हमने अभी, कि शार्क्स होते हैं, आई एम श्योर कि आपके 7 साल के करियर में आपने भी काफ़ी सारे शार्क्स से आपकी मुलाकात हुई होगी. आई एम श्योर कि लोग आपके पास आके पहले तो मे बी इनिशियली आपको डाउट करते थे, नीचे खींचने की कोशिश करते थे. इवेंचुअली कुछ ऐसे भी शार्क्स शायद आए होंगे जिन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी थी, एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक यू मस्ट बी थैंकफुल टू योरसेल्फ कि थैंक गॉड कि नहीं लिया. आई एम श्योर कि ऐसे सिचुएशंस हुए होंगे आपके लाइफ में. मेरे लाइफ में काफ़ी सारे सिचुएशंस हुए जहाँ लोगों ने मेरे क्या बोलते हैं बेसिकली देव ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मी, देव ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ माई इनोसेंस एज अ यंग एंटरप्रेन्योर. तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के क्या मैसेज है शार्क्स के बारे में? क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने साइकोलॉजी की बात करी, पीपल स्किल्स की बात करी, ये भी एक पीपल स्किल होती है कि खुद बच कैसे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में शार्क्स होते हैं.
बिल्कुल होते हैं. मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ फेरी टेल. क्या आपको लग रहा है परियों की कहानी है, बहुत अच्छा अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी होता है. मैं तो ऑफलाइन बिजनेस में, तो मुझे पता है कि रोड पे जब हमारी दुकान पे लोग कैसे कैसे आते हैं, आपके गुंडा भी आएगा जो बोलेगा चाय, मेरे से पैसे लेगा, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन भी आएंगे वहाँ पे, जो लोकल पॉलिटिशियंस रहते हैं, बहुत सारे, भीड़ लग जाती है तो पुलिस का डंडा भी चलता है. प्रॉब्ली वी आर दी यंगेस्ट कंपनी इंडिया जिसके पास में 5 साल के 6 साल के अंदर में 2 बार छापे पड़ गए. क्या आप क्या मिला के देते हो? सो एन नंबर ऑफ थिंग्स आएगी. तो एक एंटरप्रेन्योर को ना शार्क, मैं बोलूँगा आपको एक पानी जैसा होना चाहिए, किसी भी ढांचे पे आप ढल जाओ. शार्क होंगे, डरना किस बात का? अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आपको पता है इस चीज़ से लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, अच्छी चीज़ करो, डरोगे किस बात का? किसी डर ही नहीं लगेगा. डरिए मत. अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, किस बात का डर? आप लगे रहो, आप प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो उस प्लानिंग को और लगे रहो काम में. अच्छी टीम बनाओ और लोगों को साथ में जोड़ो, लोगों को एजुकेट करो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कस्टमर बेस बढ़ाओ. शाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे. आज छोटी शाख आएगी, कल बड़ी शाख आएगी, आज पिराना है, कल तो असली में शाख आएगी. जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, शाख का लेवल बड़ा होता जाता है, लोग बड़े बड़े आने लग जाते हैं, गिद्ध आने लग जाते हैं फिर आपको. तो आपको सबको मिला के चलना है.
बेसिकली आप ये कह रहे हो कि डिफेंडिंग पर फोकस करने से ज़्यादा आपको खुद की अग्रेशन और खुद के अटैकिंग पर फोकस करना चाहिए.
बिल्कुल, आपको अटैकिंग होना चाहिए, आपको दोनों चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ अटैकिंग नहीं. अटैकिंग में कई बार क्या होता है ना कि आपसे बड़े भी हैं जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, वो हो सकता है आप अग्रेसिव होकर कहीं गलत डिसीजन लिए. तो आपको ना देखना है कि कहाँ पे नरम होना, कहाँ पे गरम होना है. आपको अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपको न्यूट्रल होकर थोड़ा सा नरम होकर ज़्यादा चलना है, लेकिन जहाँ पे नरम होकर बात नहीं चली, आपकी लक्ष्मी में जहाँ पे बात आई, तो लड़ जाओ सामने वाले से, देखा जाएगा जो होगा.
लड़ने के बारे में बताओ, कन्फ्रंटेशन, लीगल बैटल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताओ. ये भी बहुत एक, अगर अगर प्रैक्टिकल एमबीए की बात कर रहे हैं तो ये भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए.
कोर्ट कचहरी की मैं आपको बात करूं तो रणवीर भाई,
बहुत सिर्फ लीगल बैटल्स नहीं,
मैं यही सारी चीज़ बता रहा हूं मैं आपको. बहुत सारी बैटलिंग आती है ना, आपको इमोशनल बैटल भी करना पड़ता है, आपको आपको कॉम्पिटिशन भी एक बैटल ही है आपके लिए. आपको हर जगह पर प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी. कोई भाई आ गया, एक मसल पावर आ गया आपके सामने, तो उसको कैसे हैंडल करना? पहली बात तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये बेकार है, वो भी 10 रुपये लेके आ रहा चाय के लिए, मैं अपनी बात बताऊँ तो वो भी मेरे लिए लक्ष्मी है. तो उसको हैंडल करना है कि भाई उससे मैं प्यार से कैसे स्माइल करके उसको काम डाउन कर दूँ, उससे 10 रुपये भी ले लूँ, उसको यहाँ पे बिना कुछ कांड के उसको जाने भी दूँ. तो आपको हर एक जगह पे अपना रुख बदलते हुए काम करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ही होती है ना, बार बार चेंज करते रहना, लोगों के हिसाब से ऐड करते रहना, मार्केट के हिसाब से ऐड करते रहना, यही तो एंटरप्रेन्योरशिप होती है. हर जगह पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दिखानी पड़ेगी.
हम एक ऐप बना रहे हैं जिसका नाम है लेवल, ये मैं ब्रांडिंग नहीं करना पर एक ऐप है और जहाँ सर वो बीटा वर्जन अभी 2 हफ्ते में रिलीज हो. नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट मजाक नहीं कर रहा, नहीं
मजाक, इन्फॉर्मेटिव मजाक था ये.
तो उसमें मेरे को फाउंडर मेरे से बहुत सीनियर है, 6 साल सीनियर है, बहुत एक्सपीरियंस बिजनेस पर्सन है हर्षिल कार्य, और माई रीज़न फॉर वर्किंग विथ हिम वॉज मुझे सॉर्ट ऑफ हायर एजुकेशन करना था, क्योंकि मेरे बाकी को फाउंडर्स अराउंड मेरे एज के, सिर्फ मनीष भाई मेरे से थोड़े ज़्यादा बड़े, हर्षिल उनसे भी बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. तो माई रीज़न फॉर वर्किंग विथ हर्षिल वॉज टू लर्न, और मैंने ये नोटिस किया कि एट वो कुछ 34-35 ईयर्स के अब वो क्या करते हैं, कोई भी कौन, वो या तो बकचोदी करते हैं ठीक है मस्ती में टीम के साथ जो भी नॉर्मल फन, पर जब काम की बातें हो रही है ना, वी हैव आइडिएशन सेशंस जहाँ आप फ्री फ्लो थिंकिंग कर सकते हो, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, एंड वी हैव प्रैक्टिकल सेशंस. और उन्होंने इन दोनों सेशंस के बीच एक बहुत स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं बॉर्डर क्रिएट करी है. तो अगर प्रैक्टिकल सेशंस की बातें हो रही है, आपके मुंह से निकलती हुई हर सेंटेंस में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए. डोंट से एनीथिंग विच कांट बी अप्लाइड. मतलब आप अगर प्रैक्टिकल सेशंस में सिर्फ आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. हम जब बातें भी करते हैं एक दूसरे से, एवरी सेंटेंस दैट लीव्स योर माउथ हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. और ये बहुत टफ कल्चर है, बट बहुत ज़्यादा यूजफुल कल्चर बन गया हमारे लिए. और ये कोई स्कूल कॉलेज आपको सिखाएगा नहीं, बट इतना क्या बोलते हैं, इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई है, इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई है बिजनेस में, दैट दिस इज़ बिन अ बिग बिजनेस लेसन फ्रॉम एज 28 ऑफ माई लाइफ. तो एक फाइनल सेक्शन है पॉडकास्ट की जो हम करेंगे, पर उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एट एज 28 आपका सबसे बड़ा बिजनेस लेसन क्या है, एट एज 28 पिछले साल का, प्लस कोविड हुआ था जो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग है. आई एम श्योर कि आप टेक्निकली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में,
हाँ
तो
पूरा ऑफलाइन. मैं वही पता, आपको रुकना नहीं है, कीप गोइंग. आप हसल करते रहो, रुको मत, डोंट स्टॉप. आपको कभी भी कॉमा भी नहीं लगना चाहिए, करते रहो कुछ भी करते रहो, कहीं ना कहीं तो लगे, हाथ पैर मारते रहना चाहिए. तो हम लोग का क्या हुआ, जब हमारे शटर बंद हुए ना रणवीर भाई, तो हम लोग को किराया, हम लोग हर जगह पे जहाँ पे सिचुएटेड हूँ, बहुत ज़्यादा किराया है, ऑफिस का किराया, दुकान का भाड़ा, आपके गोडाउन का, जितने भी हमारे यहाँ पे सामान रखे थे सबकी शेल्फ लाइफ होती है, सारा ख़राब. हमारे यहाँ पे जितने लड़के काम करते हैं ज़्यादातर ऑर्फन, हम उनकी सैलरी नहीं काट सकते, सबकी सैलरी देनी है. तो हम लोग का कैश फ्लो ना नेगेटिव तरफ जाने लग गया. जैसे हमारे शटर बंद हुए ना, हमने अपना लैपटॉप खोल लिया, और लैपटॉप खोला हमने उसी टाइम पे, कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ही अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की US, कनाडा और UK में. तो करते जाओ ना कहीं तुक्का लगेगा आपको. आपकी पुरानी जितने आपके पास इनपुट है ना, उसको यूज़ करो, उस इनपुट को, कुछ ना कुछ तो तगड़ा आउटपुट निकलेगा. जस्ट डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए रुकने का नहीं है.
शायद यही एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन भी होती है, बस चीज़ें करते रहो,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा आपका.
अब क्या प्लान कर रहे हो, आगे का क्या प्लान कर रहे हो? एक्सपेंशन
विद सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन साथ में. वी आर डू द रियल एस्टेट ऑल्सो, तो हम लोग वो चीज़ भी करते हैं,
मैकडोनल्ड्स मॉडल की तरह
भी. और वैसे भी हम लोग एक टाउनशिप्स और ये सब करते रहते हैं.
मैकडोनल्ड से आपने सीखा क्या है वैसे एज अ ब्रांड, क्योंकि आप उसी सेक्टर में काम कर रहे हो, पैरेलल बिजनेस मॉडल है. तो जैसे एज अ यूट्यूबर आई डोंट हैव अ रेफरेंस पॉइंट, मैं ढूंढते रहता हूँ, शायद फरहान अख्तर हो सकते हैं, शायद अमेरिकन यूट्यूबर्स हो सकते हैं, बट मैकडोनल्ड्स आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट है. तो उनको स्टडी कर करके आपने सीखा गया है, उन लोग ने इतना एक्सपैंड, आपने फाउंडर मूवी देखी होगी, आपकी भी एनर्जी उससे मैच करती है बहुत.
बिल्कुल.
पर क्या सीखा आपने मैकडोनल्ड्स से?
डिसिप्लिन,
सिस्टम,
SOPs बहुत ज़्यादा.
क्या होता है SOP?
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, कि आप इस चीज़ के बाद ये करोगे, इस चीज़ के बाद ये करोगे, इतना टाइम लोगे इस चीज़ के लिए. SOPs बहुत वेल डिफाइंड है. बेसिकली नॉट जस्ट मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, जितने भी वेस्टर्न कंट्री के जितने भी बिग जायंट एक FNB मॉडल्स हैं, सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं रणवीर भाई. तो इन लोग का ना डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहता है, SOPs बहुत अच्छा रहता है, मार्केटिंग बहुत अच्छा, पैसे आ गए तो मार्केटिंग कर लेते हैं. तो इनसे हम लोग यही चीज़ सीखते हैं कि किस चीज़ को कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए. और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, ड्रेसअप सीखते हैं उनसे, क्यों ये चीज़ यूज़ करें, कोई ना कोई कारण होगा. अगर उन लोग का एक कलर भी चेंज हुआ ना, एक हेयर कैप भी उनने पहनी है उस कलर की पहनी, तो वो चेंज क्यों किया? ज़रूर कुछ ना कुछ कारण हो, क्योंकि इतने बिग लेवल पर काम कर रहे हैं और हमको भी वही बनना है. अभी वही देश में हमारे बेचते थे, अभी हमको विदेश में जाके, हम लोग गोरों को भी बेच रहे हैं फ्रेंचाइजी, सो उनसे हम सीख रहे हैं.
कैसा रहता है उनके साथ काम करना?
डॉलर में आते हैं पैसे तो ये रहता है. और फिर उनके जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं. उनको मेरी स्टोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हो, आपने कितना स्ट्रगल किया, कोई मतलब नहीं. मेरे को फाइनेंशियल शीट पे दिखाओ कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरा ROI कितने परसेंट में होगी, मेरा पैसा कितना लगेगा, मेरा पैसा कितने दिन में निकलेगा, कितने लोग काम करेंगे, आप क्या क्या संभाल रहे हो, बैकएंड में आप क्या मदद करोगे.
वर्सेस इंडिया में कैसा होता है?
इंडिया में देख रहे हैं कि भाई ये दुकान चल रही है, मतलब हमारी भी चल जाएगी, तो काफ़ी
इमोशनल डिसीजन
रहते हैं, इमोशनल ड्रिवन रहते हैं, जो कि हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि जितने भी हम लोग सस्टेनेबिलिटी में ही काम करते हैं, ये नहीं कि बस बेच बेच के निकल गए. तो लोगों के लिए वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है कई बार, कि एक यू नो प्राइमा फेसे डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ भाई देखा मैंने, चल रहा है, ठीक चल रहा है, हमारा भी चल ही जाएगा, और जो चीज़ होगा बीच में हम सीख लेंगे करते करते.
एक यूट्यूबर है टेक्निकल गुरु जी, आपने उनका नाम सुना?
हाँ जी
हाँ, OG यूट्यूबर है.
हाँ हाँ हाँ.
तो उनके बिजनेसेस अफ्रीका में एक्सपैंड हुए थे, एंड आई मेट एट एज 23, और उनसे मैंने सीखा कि यार अफ्रीका में भी आप एक्सपैंड कर सकते हो बिजनेस को, या जो भी ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया, आप इन सारे कंट्रीज को भी स्कैन कर रहे हो?
बिल्कुल. हम तो अभी दोहा में ओपन हो जाएंगे अभी हम. UAE में तो ऑलरेडी हमारा दूसरा आउटलेट आने वाला है, नेपाल हो गया है, बाकी US UK में हम लोग तो पूरा कनाडा बेच चुके हैं, कनाडा में फ्रेंचाइजी हमारी नहीं अवेलेबल है, बिक गया है पूरा. सो हम लोग के लिए तो सारा देश ही खुला हुआ है, हर कंट्री को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनको पसंद क्या है, जो उनको पसंद है ना हम सब बना सकते हैं. बनाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ भी खाने पीने के लिए बनाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं होता, हम सब बना लेंगे, जो चीज़ उनको चाहिए ना हम बना लेंगे.
आई एम अज्यूमिंग कि जब आप किसी देश को टारगेट करते हो कि हाँ यार यहाँ एक्सपैंड करना, वहाँ एक्सपैंड करना, आप पहले कोई रिसर्च टीम भेज देते हो
जी?
दैट्स करेक्ट.
पहले हम लोग खुद स्टडी करते हैं, यहीं पर बैठ के गूगल शूगल करते हैं, हम लोग अपने देशी क्राउड को पहले पकड़ते हैं, क्योंकि वो हम लोग को पहले थोड़ा सा ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे, और देसी क्राउड आपको हर जगह मिल जाएगा. एक बार देसी क्राउड को पढ़ ली, फिर उनसे पूछे ना कि यहाँ पे क्या चीज़ है. और जब आप उन्हीं देसी क्राउड को अगर अपने फ्रेंचाइजी बेचोगे, तो उसको तो पता है वहाँ पे 15-20 साल से रह रहा है, वो उसको तो पूरा पता है, वो तो उस देश का ही हो गया आधा. तो उसको पता रहता है कि क्या चीज़ है यहाँ पे, जो चीज़ चल सकती है, कौन से मार्केट में चल सकती है, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है.
बहुत रूड क्वेश्चन है, पर मैं फिर भी पूछूंगा. एक्विजिशन ऑफर्स आई एम श्योर आए हैं आपको भी, तो आर यू थिंकिंग?
नॉट येट.
ओके, बट यू आर ओपन टू इट एट सम पॉइंट इन योर फ्यूचर?
इफ द एक्विजिशन जो भी कर रहा है वो अगर विजन ओरिएंटेड, मिशन ओरिएंटेड है, तो विल थिंक अबाउट इट,
क्योंकि दिस इज
फ्यूचर में, बहुत फ्यूचर में, अभी तो नहीं,
बिकॉज दिस इज योर बेबी.
यस, दिस इज आवर बेबी, हम लोगों ने इसको बड़ा किया, पाला पोसा है, तो विजन से कभी भी नहीं होना चाहिए. मतलब अगर देश की बात आए तो मोटा पैसे के लिए बेच दें तो मज़े नहीं है. अगर वो मोटा पैसा आ रहा है आपके पास, लग रहा साथ में, और आप भी मैनेजमेंट में काम करो, तो ठीक है, 100-200 करोड़ रुपए लगा दिया कोई, हम साथ में काम कर रहे हैं इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, धड़ाधड़ आउटलेट खोल देंगे हर जगह पे एक बार में ही, और विजन भी अपना मैच हो जाएगा और प्रॉफिट तो बना ही रहे हैं.
तो मैं स्टार्ट करता हूँ. बेसिकली आई वुड ऑलवेज से फर्स्ट सब्जेक्ट इज डिज़ाइन थिंकिंग, शायद क्योंकि मैं डिज़ाइन थिंकिंग के लिए पैशनेट हूँ, बिकॉज मे बी आई एम अ क्रिएटिव प्रोफेशन. पर जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके बारे में अच्छे से सोचना. मे बी सब्जेक्ट जीरो डेफिनेटली पीपल स्किल्स, पीपल को जानिए, लोगों को जानिए, लीडरशिप, उसमें सब आ गया, कंज्यूमर साइकोलॉजी, मार्केटिंग भी उसी में है. पर आप बताइए,
एंटरप्रेन्योरशिप के नज़रिए से मैं बताऊँ स्टेप बाई स्टेप, तो सबसे पहले एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है.
स्टेप जीरो आपका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन.
क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो पायदान रहता है वो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, चल क्या रहा है मार्केट में,
दुनिया में,
दुनिया में, मार्केट मतलब दुनिया ही, मतलब क्या चल रहा है मार्केट में. अब इस मार्केट में क्या चीज़ नहीं है, उस चीज़ को हमको लाना है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो तो क्लियर हो गया कि वो चीज़ नहीं है जो चीज़, उस चीज़ को लाना है अपने को.
शायद लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है दुनिया में,
एग्जैक्टली उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कैसे लेके आना, उसको ईज बनाने के लिए क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, क्या वो टारगेट आप सही कर रहे हो उस प्राइसिंग की. मान लो अगर कोई प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट के लिए है, तो उसका नहीं 1-10 लाख का माल आप ले रहे हो, लेगा ही नहीं, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, तो उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. थर्डली उसके बाद उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए. अगर प्रोडक्ट में दम होता तो मार्केटिंग की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी कई लोग उस चीज़ से चूक जाते हैं जिनको उस चीज़ की ज़रूरत रहती है, तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है. फिर उसके बाद में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है. आप एक बार मार्केट में चल गए तो आप ये मत भूलिए कि आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन निरंतर आपको चेंज करते रहना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहना है, या सर्विस में डेवलपमेंट चेंजेस लेके आना चाहिए, बेटरमेंट करता रहना चाहिए, वो चीज़ आपको करते रहनी चाहिए. फिर उसके बाद एक्सपेंशन करिए आप.
स्केलिंग,
स्केलिंग
ठीक है, स्केलिंग के बारे में थोड़ा समझा दीजिए, कैसे करते हैं बेसिकली स्केलिंग? फॉर मी लाइक वन एंटरप्रेन्योर टू अनदर, व्हाट आई रिस्पेक्ट द मोस्ट इज द अमाउंट यू हैव स्केल्ड. इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूँ.
वाइडर ऑडियंस तक पहुँचना आपके लिए, वाइडर कस्टमर तक पहुँचना मेरे लिए. ज़्यादा कस्टमर यूज़ करेंगे, ज़्यादा आपके व्यूअर्स देखेंगे, तो वो आपका कंटेंट रीच बढ़ेगा. मेरा ज़्यादा कंज्यूमर मेरे आउटलेट पे आएगा तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो जिससे मेरा टर्नओवर बढ़ेगा.
उन्हें पकड़ते कैसे?
रिटेन करना पड़ता है आपको.
पहले रिटेन कीजिए,
पहले तो एक्सपोजर. जब आपके पास कस्टमर आया, जैसे मैंने एक्सपोजर का बताया कि नकली भीड़ बना के, दैट इज़ एक्सपोजर. फिर आपको अपने प्रोडक्ट को देना है, तो आपके प्रोडक्ट में जादू होना चाहिए कि एक बार वो आया ना, तो आप उसको रिटेंशन कैसे करते हैं, एक स्माइल के साथ में. आपके पास में आपने एक स्माइल कर दी कि आप अगली बार आइएगा, आपसे फिर बात करके, इमोशनल अटैचमेंट करके, या तो उसका डेटा लेके, फिर बार बार शूट करके, मार्केटिंग में उसको दिख के कि यार ये मैंने टेस्ट किया था, मुझे अच्छा लगा था, तो उसको रिटेन करना. रिटेंशन इज़ द की फॉर सस्टेनेबिलिटी. अगर आपने माल एक बार कोई भी बेच सकता है, कोई भी सेल्समैन एक चीज़ कोई भी बेच सकता है एक बार में, कि भाई मेरे को बोला एक ग्लास बेचना है, बेच दूंगा उसको, चिपकाने में क्या है, कोई भी चिपका सकता है, लेकिन उसको कंटिन्यूसली यूज़ आना चाहिए, तभी आपके पास वो दूसरा ग्लास लेने आएगा, या फिर अपने चाचा मौसा साड़ू भाई किसी को बताएगा कि भाई ये ग्लास बहुत यूज़फुल था, आप भी लो. तो उसका यूज़ होना चाहिए उस चीज़ के लिए.
एनी अदर सब्जेक्ट्स?
AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मुझे लगता है कि HI भी होना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होना चाहिए. वही जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था, तो हर बार आपको प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए ना, आपको HI बहुत ज़रूरी लगता है. AI से काम नहीं होगा. HI लगेगा आपको कि आपको इस चीज़ में किस तरीके के क्या बदलाव लेके आने हैं. कल्चरल बदलाव भी हो सकते हैं इनसाइड द कंपनी, आउटसाइड द कंपनी भी हो सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट डिफरेंट लेके आना है, तो वो आपको HI से होगा.
क्योंकि कल्चर भी बदलता जाता है, हजन दुनिया में कल्चर भी बदलता जाता है, हैबिट्स बदलते जाते हैं.
बिल्कुल बदलती है, हर टाइम बदलती है.
और शायद जितने भी आपने शायद 5-6 सब्जेक्ट्स को नेम किया, ये 6 सब्जेक्ट ना अगेन सुनने में आसान है, बट एक्चुअली अप्लाई करना मुश्किल होता है.
बहुत मुश्किल है.
और इसलिए कहते हैं कि 9 out of 10 स्टार्टअप्स फेल, एंड द वन विच सक्सीड्स फॉलोज द ऑल 6 वेरी वेल.
एंड दे हैव टू फॉलो इट, मतलब वो हमेशा ही फॉलो करता रहना चाहिए. कभी भी एक बार भी चूके ना, तो उनका बहुत लॉस होना है.
कभी आपको पागलपंती वाली फीलिंग महसूस होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, कि यार पागल हो रहे हैं?
पागल मतलब नहीं रणबीर भाई, मतलब पागल जैसी फीलिंग नहीं आती है, लेकिन फीलिंग आती है कि यार कितना करते हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते थे, मतलब कहाँ थे, कहाँ आ गए वाली फीलिंग आती है कभी कभी. कुछ भी नहीं थे, भटक रहे थे, 20-20 का पेट्रोल डलवा रहे थे. बताइए आज रणबीर अलावादे शो में बैठे
चाय सटा बार पॉडकास्ट में आज पर
तो वो वाली फीलिंग आती है कि कहाँ से कहाँ तक वाली फीलिंग ज़रूर आती है. तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है, मम्मी पापा के चेहरे याद रिकॉल होते हैं. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पता नहीं अपने पापा को हक कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. तो जब टेड दी मैंने, वहाँ पे लोगों ने चेयर अप किया कि आप हक करिए, मैंने बोल दिया था स्पीच में, तो मैंने पहली बार अपने पापा को हक किया. बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे पापा, तो वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार ये कर लिया, ये अकम्पलिशमेंट है आपका. पापा सुनने लग गए हैं, पहले वो सुनाते थे, अब सुनने लग गए, जब कुछ चीज़ शेयर करो ना तो सुनते हैं, पहले वाली फीलिंग थी.
बिजनेस की सबसे बड़ी देन क्या है अकॉर्डिंग टू यू? सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए?
फैमिली, बिजनेस फैमिली. ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो फैमिली बनी है, एक हमारे यहाँ पे एक लड़का है रणबीर भाई, ही इज़ मनोज, सबसे पहला था स्टार्टिंग से. ही इज़ ऑर्फन. एक तिलक नगर है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे एक डेंटिस्ट के यहाँ पे जूते चप्पल जमाया करता था बेसिकली. वो हम लोग उसको स्टार्टिंग के 2 महीने की सैलरी हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाए थे उसकी, वो फिर भी था हमारे साथ में रणबीर भाई, फिर भी आज तक है. आज उसके पास इंदौर जैसी सिटी में बंगला है, ही ओन अ व्हीकल, और अभी उसका हम लोग UK का पासपोर्ट बना रहे हैं. सो मतलब ये फैमिली, ये चीज़ कर देना किसी के लिए, इसके जनरेशन बना देना, इतने सारे लोग जुड़ जाना, 1000 से ज़्यादा पॉटर्स फैमिली हम लोग के साथ जुड़ी है जो ये कुल्हड़ बनाती है, वो अलग ही फीलिंग है. हम लोग कभी जाते हैं ना, तो वो लेके आ जाते हैं थाली और वो दिया वगैरह, तो वो वाली फीलिंग जो है वो मतलब ऐसा लगता है कि एक नई फैमिली बन गई बहुत बड़ी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत गजब की फीलिंग रहती होगी, बहुत गजब की फीलिंग.
कभी आपको लगता है, मतलब आई वॉन्ट से खुद के सक्सेस को देख के, पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को देख के, कि भगवान का भी हाथ रहा है, बहुत लक का फैक्टर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कभी कभी, स्पेशली बिग मोमेंट्स में. एक शब्द मैंने सीखा था लास्ट ईयर जिसका मतलब मेरे एक मेंटर है लूक कुटीनो, उन्होंने शब्द सिखाया था. शब्द है प्रोविडेंस. सुना है कभी?
नहीं.
प्रोविडेंस मतलब आप करियर में खुद की चीज़ें करते रहोगे, टास्क करते रहोगे, पर कभी कभी आपके करियर में मुश्किलें आ जाएंगी. पर जब आप उन मुश्किलों का सामना कर रहे हो तो एक वो फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार, ऊपर वाला देख लेगा ये भी चीज़, हम संभाल लेंगे. वो फीलिंग को प्रोविडेंस कहते हैं कि देयर इज़ प्रोविडेंस इन माई लाइफ. ये मुझे भी नहीं पता था, पर एक बार जब मैंने वो शब्द सीख लिया, मैंने सोचा हाँ, आई विश कि 22 ईयर्स पर किसी ने मुझे ये शब्द समझाया होता. तो आपको कभी वो प्रोविडेंस वाली फीलिंग?
बहुत बार आई है. फिर तो अगर यही चीज़ है तो मैं बहुत फेल हुआ हूँ रणवीर भाई. मैं CA में फेल हुआ हूँ स्टार्टिंग में. मैं उसके लिए प्रिपरेशन किया, फिर मैं IIM के लिए प्रिपरेशन की, मैंने CAT दिया, उसमें ही फेल हुआ. फिर मैं UPSC के लिए चला गया, वहाँ फेल हुआ. फिर जब स्टार्टअप करने लग गया तो ये छापे पे बढ़ने लगे, यहाँ पे डर लगा. लेकिन वो सारी चीज़ निपटती गई. मतलब CA भी हमारे अंडर भी CA हैं, IIM के बच्चों को हम लोग रिक्रूट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छी बनने लग गई. तो मतलब संभाल लिया ऊपर वाले ने उस टाइम पे. अगर मैं उस टाइम पे डर जाता, टूट जाता, क्या 3-4 बार फेल हो गया, क्या ही करूँगा. पढ़ाई घर वाले बोलते थे एक में भी नहीं हो पाया, पापा ने इतना कोचिंग का पैसा दिया, सब बर्बाद, क्या कर रहे हैं, आखिरी में आके चाय बेच रहे हैं. लेकिन हर वाले ऊपर वाले ने संभालते गए हर टाइम पे हम लोग को. फॉर्चुनेटली सब चीज़ अच्छा रहा.
शायद इसलिए आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो अभी.
स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, क्योंकि मतलब उस टाइम पे भी मैंने ही किया. ऊपर वाले ने ज़रूर साथ दिया, लेकिन किया मैंने. तो मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं काम करता हूँ. कि ऊपर वाला साथ देगा, लेकिन आपको करना है. कई बार डाउन फेज़ आ सकता है जहाँ पे वो आपको बचा लेगा, लेकिन वो डाउन फेज़ आपको आने कम देना. वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. बहुत लोगों के डाउन ग्राफ जाते हैं, तो आपको कोशिश करना उसको कम ऑक्यूपाई करो. आपका ग्राफ ऊपर ही चले, कभी कभार चला जाएगा तो संभाल लेगा वो.
ब्यूटिफुल डूबे साहब. ये पॉडकास्ट के एंड में चलो एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे. ये गर्लफ्रेंड्स के बारे में नहीं होगा.
थैंक यू.
जो भी मतलब बिजनेस के बारे में नहीं होगा, बट जनरल सवाल है. एक कोई मूवी है जो आप चाहते हैं कि हर कोई देखे, शायद एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, शायद लाइफ रिलेटेड, जिसने आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो?
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो मैं बोलूँगा गुरु. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो. बहुत ज़्यादा पसंद है. सेकेंडली 3 इडियट्स, स्टूडेंट्स का स्ट्रगल दिखाया है, अल्टीमेट सक्सेस दिखाया है, उसको टाइम कितना लगता है, डाउनफॉल कितना आता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी इम्पॉर्टेंट रहती है थ्योरेटिकल के साथ में भी अगर आप करते हो तो. आई थिंक ये दोनों मूवी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है मेरी लाइफ में.
दुबे साहब थैंक यू. अनुभव दुबे, आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट पर लौट के आइए, क्योंकि MBA के बाद एक सुपर स्पेशलाइजेशन MBA भी करना है लोगों को. मज़ा आया आपसे बात करके.
मेरे को तो बहुत मज़ा आया.
आप बहुत खुले इंसान हो. लाइक अक्सर इस पॉडकास्ट पर मैंने आपसे बाहर बिल्कुल बात नहीं करी, मतलब हम बस आ गए यहाँ, पता है आपको देख के ऐसा लगा कि हाँ पॉडकास्ट हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, और वही हुआ. आप काम थे. आई डोंट नो. देख मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए, अभी मुझे भी तुरंत पता चलता है कि इनकी इस इंसान की एनर्जी क्या. आपको देख के ही मुझे लगा कि हाँ रेडी, चलो लेट्स गो, वो वाली फीलिंग आ गई. मतलब मैंने सोचा भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं लगा. एंड आई डोंट नो, ये आप खुद का प्रोविडेंस कह सकते हो, ये सिचुएशनल
प्रोविडेंस से भी है. ये ड्यूअल साइड है एक्चुअली. मुझे भी, मैं भी इतने काम हो गया कि मतलब आप आए एकदम नॉर्मल मिले, फिर उसके बाद में अपन अंदर आए, बोले चलो अपन अंदर चलते हैं. आपने 3-4 बार मुझसे पूछा कैसे लोग, तो मैं समझ आ गया कि बंदा एकदम चिल है. हाँ. ना बहुत अच्छी वाइब मैच करेगी.
नहीं, सेम ब्रदर. आई एम ऑनेस्टली ग्लैड वी मेट. मी टू. एंड जस्ट आई विश यू ऑल द सक्सेस यार. वो जो आपका फॉरगेट बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा, आई एम श्योर 110%, बट उससे ज़्यादा 200% आई एम श्योर कि जो आपका खुशी का गोल है वो भी हासिल हो जाएगा.
थैंक यू सो मच.
गॉड ब्लेस यू.
थैंक यू.
ऑनेस्टली दोस्तों, मुझे एंटरप्रेन्योर से बात करना सबसे सही लगता है. आई लव टॉकिंग टू एक्टर्स, हिस्टोरियंस, जो भी, ठीक है. पर जब आप एक एंटरप्रेन्योर से बात करते हो ना, उनकी आँखों में वो स्ट्रगल दिखाई देती है, उनका एनालिटिकल मन दिखाई देता है. बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड था ये. प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आपकी शेयर्स की वजह से ये पॉडकास्ट जिंदा है. मैंने सोचा था पास्ट में कि यार द रणवीर शो हिंदी को स्टॉप कर देंगे, बट आपके इतने सपोर्ट की वजह से वी हैव केप्ट इट अलाइव. ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के एपिसोड्स को आपको सक्सेसफुल करवाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्लीज़ मेक इट रीच 200K 300K व्यूज़ एटलीस्ट. प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ऐसा कॉन्टेंट ना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. कीप सपोर्टिंग TRS हिंदी. ऐसा कॉन्टेंट आते रहेगा. थैंक यू, लव यू ऑल. जय हिंद.